भाव से शुद्ध आहार को कहते हैं,
भाव से
शुद्ध आहार को कहते हैं, अशुद्ध का हो गया। अधकर्म से परिणत हुए मुनि प्रासूत द्रव्य के ग्रहण करने में भी बंधक कहे गए हैं।
ठीक है, अधकर्म तो आहार के प्रति कृतकारित अनुमोदना आदि साधु की तरफ से होता है तो उसको अधकर्म दोष माना जाता है। तो ऐसा आहार यद्यपि प्रासुक है, सचित्त नहीं है, लेकिन अधकर्म से दूषित है, प्रासुक होकर के भी अधकर्म से दूषित है, इसलिए उस प्रकार का अधकर्म दोष न करे। यही उपदेश है, अधकर्म ने साधु कृतकारित अनुमोदना न करे।
किंतु शुद्ध आहार की गवेषणा करने वाले अधकर्म से युक्त आहार ग्रहण करने में भी शुद्ध है। प्रासुक द्रव्य के होने पर भी यदि साधु अधकर्म से परिणत है, अर्थात यदि वे गौरव से उस आहार को अपने लिए किया हुआ मानते हैं, तब वे कर्म का बंध कर लेते हैं।
साधु यदि भाव से कृतकारित अनुमोदना तो नहीं किया है, परंतु उनका किया हुआ आहार यदि यह अच्छा है, अपने लिए बनाया है, ऐसे अपने तरफ से भी भावों में विचार करते हैं तो भी साधु बंधक है, यानी कर्म बंध करते हैं। इस प्रकार का भाव भी साधु नहीं कर सकते, अपने लिए बना हुआ है, अपने लिए बना हुआ है ऐसा भी भावना भागे तो भी बंद होगा। और उससे पूर्व कृतकारित अनुमोदना भले ही नहीं किया हो, बाद में अपने लिए बना है ये खुशी मन में हो रही है तो भी वो बंधक है।
यदि उद्देश्य आहार नहीं रहा तो हमने तो बनाए न्याय।
साधु कृतकारित अनुमोदना से रहित होने पर भी यदि श्रावक के द्वारा बनाया हुआ आहार अपने लिए बना हुआ है ऐसा विचार करते हैं तो श्रावक निर्दोष है और मुनि भी पहले निर्दोष है, लेकिन बनने के बाद अगर साधु ऐसा विचार करते हैं तो दोषी है, बंधक है, ऐसा बता रहे हैं।
पुनः शुद्ध की खोज करते हुए अर्थात अधकर्म से रहित और कृतकारित अनुमोदना से रहित ऐसा आहार यत्न पूर्वक चाहते हुए साधु कदाचित अधकर्म युक्त आहार के ग्रहण करने में भी शुद्ध ही है।
क्या बताए?
पुनः शुद्ध की खोज करते हुए अर्थात अधकर्म से रहित और कृतकारित अनुमोदना से रहित ऐसा आहार यत्न पूर्वक चाहते हुए साधु कदाचित अधकर्म युक्त आहार के ग्रहण करने में भी शुद्ध ही है।
और वो बच्चा बोल रहा था उधर उपयोग गया,
कर्म बंद कर लेते हो तो उसके आगे पुनः शुद्ध की खोज करते हुए।
अच्छा, शुद्ध की खोज करते हुए
अर्थात अधकर्म से रहित और कृतकारित अनुमोदना से रहित ऐसा आहार यत्न पूर्वक चाहते हुए साधु कदाचित अधकर्म युक्त आहार के ग्रहण करने में भी शुद्ध है।
ठीक है, अधकर्म यानी श्रावक के तरफ से अधकर्म हुआ है, श्रावक के तरफ से वहां अधकर्म कैसे हुआ, अपने लिए ही भोजन निर्माण किया है इसलिए वह अधकर्म तो हो ही गया, खुद के लिए किया है, अधकर्म के बिना तो बनता ही नहीं है। फिर साधु आहार शुद्धि से निकले, शुद्ध आहार मिले यानी अधकर्म से रहित मिले ऐसा कहते हुए चले गए हैं, और वैसा जाने के बाद वह अधकर्म जनित दोष से दोषित होने पर भी और साधु के द्वारा कृतकारित अनुमोदना से रहित होने पर भी और उसका ग्रहण होता है तो वह दोष नहीं है। अधकर्म का बहुत डिटेल बता रहे हैं, डिटेल इसलिए बता रहे हैं कि अधकर्म है क्या, वो संक्षिप्त बताया था पहले, तो उसमें ऐसा ना हो कि शंका रह जाए। तो यहां पर ये डिटेल बताया जा रहा है कि अधकर्म से रहित होकर के भी साधु अधकर्म रहित आहार को श्रावक के तरफ से ले रहा है और लेते समय ऐसा मन में आया कि मेरे लिए बना हुआ है, खुद साधु समझने लगे तो दोष के भागीदार है, बंद करेंगे वो। परंतु ऐसा कुछ भावना नहीं भाएंगे, ये तो श्रावक का बनाया हुआ आहार है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा समझ करके लेंगे तो दोष नहीं लगेगा। है वो अधकर्म से, उनके तरफ से अधकर्म का बना हुआ है, साधु का कोई कृतकारित अनुमोदना भी नहीं है, पर मन में कैसे भाव आ जाए, ये तो श्रावक का अतिथि संविभाग का हिस्सा मुझे मिल रहा है, अतिथि संविभाग का विभाग उसमें से अपने को मिल रहा है, ये निर्दोष है, इस प्रकार भावना आना चाहिए। वो नहीं आया और उससे उल्टा आया तो ये तो अपने लिए बना हुआ है, बहुत अच्छा है अपने लिए बना है तो दोष लगेगा, बहुत अच्छा है अपने लिए बना है तो दोष लगेगा, क्योंकि श्रावक को ही जब ये उपदेश है कि साधु के उद्देश्य आहार मत बनाओ, पर साधु ऐसे भावों में कैसे भा सकता है कि ये मेरे लिए है, मेरे लिए पका हुआ है, नहीं भा सकता है ना। अगर ऐसा भाता है तो साधु को कर्मबंध होता है, ये बता रहे हैं। देखो कैसा सूक्ष्म है कि नहीं, खड़क का धार इसलिए कहा है, जैन धर्म भावों का खेल है, क्रिया का नाम जैन धर्म नहीं, उन क्रियाओं के आधार से जो भाव निर्मित होते हैं, निर्दोष बंध रहित भाव, कर्म बंध से रहित भाव, वो जैन धर्म।
यद्यपि वह आहार अधकर्म के द्वारा बनाया हुआ है तो भी साधु के बंध का हेतु नहीं है, क्योंकि उसमें उन साधु की कृतकारित अनुमोदना आदि नहीं है।
नहीं है, ठीक है।
आगे दूसरी बात है, सभी पिंड दोष द्रव्य और भाव से संक्षेप में दो प्रकार के हैं। पुनः द्रव्य से संबंधित तो द्रव्य में है और भाव से संबंधित आत्मा का परिणाम है।
हाँ।
इसके बारे में आचार्य जी, सभी पिंड दोष द्रव्यगत और भावगत की अपेक्षा से संक्षेप से दो प्रकार है, अर्थात द्रव्य पिंड दोष और भाव पिंड दोष, ऐसे पिंड दोष के दो
भेद किया, बहुत अच्छा।
उद्गम आदि दोष से सहित भी अधकर्म से युक्त आहार द्रव्यगत पिंड दोष कहलाता है, वह द्रव्यगत पुनः द्रव्य दोष है।
16 जो दोष बनाए हुए हैं वो सभी क्या हो गए, फिर से पढ़ना उसको।
सभी पिंड दोष द्रव्यगत और भावगत की अपेक्षा से
दो प्रकार के,
अर्थात द्रव्य पिंड दोष और भाव पिंड दोष, ऐसे पिंड दोष के दो भेद है। उद्गम आदि दोष से सहित भी अधकर्म से युक्त आहार द्रव्यगत पिंड दोष कहलाता है,
वो तो द्रव्यगत पिंड दोष है। अधकर्म का मतलब श्रावक ने पकाया, यही अधकर्म, साधु के उद्देश्य से नहीं पकाया, खुद को ही पका रहा है, ये भी अधकर्म दोष से ही दूषित है, क्योंकि उसमें पांच स्थावर कायिक त्रस्कायिक आदि जीवों की हिंसा अवश्य होती ही है, इसलिए अधकर्म। यानी आहार निर्माण पाप के बिना उत्पन्न नहीं होता, और श्रावक अवस्था एक ऐसी अवस्था है कि पाप के बिना रह नहीं सकता, यानी भोजन के निमित्त से पाप तो होता ही है, और उस पाप को के बिना खुद भी नहीं खा सकता और न अतिथि को दे सकता है, तो खुद के लिए तो पकाएगा ही ना, श्रावक धर्म है वो, खुद पकाना और खुद खाना। परंतु ये जो पकाना हो रहा है और खुद स्वयं के लिए पका रहा है, वह भी अधकर्म दोष से दूषित है। पर साधु उसको ग्रहण करते हुए अगर ये मन में भाव भाए कि ये जो पकाया है ये बहुत अच्छा पकाया है, मेरे लिए पकाया है, मेरे लिए पकाया है, ऐसा कहने पर भी साधु बंद करता है। इसलिए इसमें पिंड दोषी, पिंड शुद्ध, पिंड दोष के दो भेद किया, द्रव्य दोष और भाव दोष। साधु अगर ऐसे भाव करेंगे तो भाव पिंड दोष है ये, और ऐसा भाव नहीं करेंगे तो उनको दोष नहीं लगेगा, परंतु श्रावक तो दूषित है ही, क्योंकि आहार तो निर्माण उनको करना पड़ता है और किया ही है खुद के लिए, तो वो अधकर्म ही रहेगा, वो साधु को नहीं लगेगा अधकर्म आहार को स्वीकार करने पर भी, क्योंकि साधु भावों से शुद्ध है। भावों से कैसे शुद्ध है, ये मेरे लिए बना हुआ है ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए भाव शुद्ध, भाव शुद्धि है। पिंड ने आहार, आहार का ग्रास पिंड कहलाता है, आहार का दोष। पिंड के दो अर्थ हैं, पिंड अर्थात शरीर भी है, परंतु यहां संदर्भ में पिंड दोष का प्रकरण चल रहा है, तो ये कोई शरीर का प्रकरण नहीं चल रहा है, ये आहार दोषों का प्रकरण चल रहा है।
भाव से अर्थात आत्म परिणाम से जो अशुद्ध है, अर्थात शुद्ध प्रासुद्धि आहार आदि पदार्थ परिणामों की अशुद्धि से अशुद्ध है, इसीलिए भाव शुद्धि यत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भाव शुद्धि से ही सर्व तपश्चरण और ज्ञान दर्शन आदि व्यवस्थित होते हैं।
बराबर, साधु भाव शुद्धि से बचे, श्रावक आहार पका रहा है दे रहा है, उनको तो आधा कर्म लग ही रहा है, परंतु वह आधा कर्म हमको भी लगे, इसके लिए साधु की जिम्मेदारी होती है कि वो भावों को संभाले। कैसे संभाले, ये मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए नहीं बना है, ऐसा समझ के खाएं, और ऐसा समझ के खाएंगे तो ये मेरे लिए बना है, बहुत अच्छा है। तो इतने भाव मात्र से भाव अशुद्ध होकर श्रावक आहार निर्माण करने में जो पाप का बंध किया है, वो पाप साधु को भी लगेगा। यानी अधकर्म जनित दोष उनको भी लगेगा, किंतु ये लगता है कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, इसका ज्ञान क्या साधु को नहीं रहना चाहिए? इसको पढ़ने से दूर रहना चाहिए कि उसमें सब पता चल जाएगा तो दोष लगते हैं? और श्रावक को भी क्या ये 16 दोषों का ज्ञान नहीं होना चाहिए? द्रव्य पिंड दोष, भाव पिंड दोष, ये इसका ज्ञान क्या श्रावक को नहीं रहना चाहिए? उनको भी रहना चाहिए, उनको पता रहेगा तो वो साधु को भी समझ पाएंगे और खुद को भी समझ पाएंगे। इस प्रकार दोनों को यदि इसका ज्ञान होता है तो निर्दोष आहारचर्या सिद्ध होती है, आहारचर्या की निर्दोषता सिद्धि होती है। रूढ़िवाद के आधार से नहीं चलना कि बहुत से मुनि महाराज ऐसे लेते हैं और एक महाराज ऐसे लेते हैं, इसलिए एक चर्या करे तो वो दूषित चर्या है और अनेक करे तो निर्दोष चर्या है, ऐसा सिद्ध कर सकते हैं? हम वहां जाएंगे यहां जाएंगे सब जगह पूछेंगे ये गलत है क्या सही है, यहां तक विचार आ जाते हैं, अरे वहां तक जाने की अपेक्षा से शास्त्र ही पढ़ो ना, यहीं पर शास्त्र है। किस किस प्रकार से खुद को दोष लगता है और साधु को कैसे दोष लगता है, शास्त्र ही पढ़ करके यही निरसन ले लो। वहां का क्या भरोसा दोष लगता है कि नहीं लगता, और वहां का यहां ज्ञान आएगा तो हो सकता है रूढ़िवाद से ज्ञान आपको आ गया, तब क्या करोगे?
सही ज्ञान होगा कैसा?
नहीं, ज्ञान होने पर भी वहां पर कुछ गलती हो रही है तो आप कैसे समझेंगे उसको? ज्ञान होने पर भी कुछ क्रियाएं उल्टी सीधी हो सकती है कि नहीं? क्या बहुत सारी चर्याएं इस प्रकार से दिखती हैं तो बिल्कुल करेक्ट ही है? ऐसा निर्णय नहीं ले सकते उसको, निर्णय तो खुद विवेक के ज्ञान से करना पड़ता है। पड़ेगा ना, विवेक से चलना चाहिए और कुछ नहीं। विवेक से चले तो न श्रावक को दोष है न मुनि को दोष है। ज्ञान नहीं होने से ही उल्टे सीधे विचार आते हैं और कुछ का कुछ समझकर उसका अर्थ का अनर्थ ऐसा हो जाता है, और जैसे ही उस अनर्थ के द्वारा धारणा बनती है, जरा उधर देखना जरा इधर देखना, यानी अलग अलग साधुओं की चर्या देख करके, अरे आज तक ऐसी चर्या हमने देखी ही नहीं। किसी साधु के एक के बारे में ऐसा सोच लिया तो ये ठीक नहीं। यदि मान लो किसी साधु की चर्या ठीक भी नहीं है, श्रावक मूलाचार ले जाकर के उसके साथ बैठ सकता है, चर्चा कर सकता है, निर्णय कर सकता है, सही गलत का निर्णय करके अपना निर्णय ठीक बना सकता है। दूसरे की चर्या देख देख करके किसी साधु को सुधारने के लिए जाओगे तो अज्ञानी कहलाओगे, ऐसा नहीं किया जाता। श्रावक अज्ञानी है वो, ऐसा भी विचार तर्क नहीं आना चाहिए मन में कभी भूल करके भी कि महाराज की चर्या फिर दो तरह की क्यों, वो गलत है क्या? फिर मान लो कोई गलती कर रहा है तो गलती तो सही नहीं हो सकती है, तो ऐसा गलत को भी बहुमत के आधार से सही ठहराने का जो विचार आता है कि वो इतने सारे लोग गलत हो सकते हैं क्या, ये विचार करना भी ठीक नहीं। बल्कि अपनी विवेक बुद्धि से शास्त्र ही निकाल करके सावधानी से पढ़ते, उससे विवेक ज्ञान प्राप्त कर लेते और फिर देखते कि कौन सी चर्या सही कौन सी चर्या ठीक, तो ऑटोमेटिक रास्ते पर लग जाती। चलने वाले के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। कोई भी कुछ नया चलता है तो नया चलना आसान नहीं होता, कुछ तो उसके पीछे उनका रहस्य रहता है, चिंतन रहता है, कहीं तो वो ठीक होंगे ना। क्या गलती को जानबूझकर करेंगे? गलती को तो कोई कर ही नहीं सकता और करना चाहेगा भी नहीं। क्या चाहेगा जानबूझकर हम गलती करें? और ऐसा कुछ अन्यथा दिखाई दे रहा है तो आकर के चर्चा कर सकते कि महाराज ये अकेली चर्या अलग से क्यों हो रही है। श्रावक स्वयं स्वतंत्र है उसके लिए चर्चा करने के लिए, नहीं हम चर्चा नहीं करते। तो चर्चा नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा ही चलेगा। मालूम चाहिए पहला, वही तो स्वाध्याय करो कहते हैं कि बैठो, तुमको जो शंका है यहां से निरसन कर लो, फिर निर्णय लो को ये सही है या गलत है। दोनों का, साधु को भी और श्रावक को भी, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, विकल्प नहीं रहेंगे। दूर दूर बैठकर वहां फोन लगाओ, यहां फोन लगाओ, वो करो ये करो ये करो, ऐसे कौन से श्रावक करते हैं, अज्ञान में जो रहते हैं वो कर सकते हैं, तो ज्ञानी श्रावक ऐसा नहीं करता। कहीं कुछ गलत दिख रहा है तो उसको ठीक करने के लिए स्वयं सामने आता है, पीछे से कुछ नहीं कहता वो। अरे साधु को दोष लग रहा है और आप देख रहे हैं और उनसे चर्चा नहीं कर रहे हैं और दुनिया भर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो ये प्रवृत्ति ठीक है क्या? नहीं, स्थितिकरण का अंग है क्या?
नहीं।
अरे स्थितिकरण ही करना हो तो आओ ना, सामने बैठो, डर क्यों रहेंगे? कुछ का कुछ समझ कर कुछ भी अनर्थ ऐसा होता है। किसके द्वारा होता है ये? जिसके पास समता नहीं, ज्ञान नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, उस पर चिंतन करते नहीं और चिंतन करना भी नहीं चाहते। सिर्फ उनको ये देखना है सभी जैसे रहते हैं वैसे आपको भी रहना चाहिए, सभी लोग जैसे रहते हैं वैसा हम आपको देखना चाहते हैं। महाराज आपकी निंदा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप अकेले ऐसे करोगे और सभी ऐसे करेंगे तो सभी लोग आपकी निंदा करते हैं, हमको सुनना नहीं होता, इसलिए आपको ही हम सुधारना चाहते हैं कि ये चर्या मत करो। तो ये ज्ञानी श्रावक है कि अज्ञानी श्रावक है? अज्ञानी श्रावक है, यानी सबके जैसे अपने को देखना चाहता है, सबके जैसे रहे तो आपकी प्रशंसा होगी। अज्ञानी के बीच में रहकर अज्ञानी रहोगे ना, कभी आपकी निंदा नहीं होगी।
पहले की चर्या देखना चाहते हैं,
पहले की चर्या देखना चाहते हैं। हो सकता है पहले गलत हो हम और अब सही हो, या अब गलत हो या पहले सही हो, पर उसका निर्णय कैसे होगा? आगम से होगा ना, यहां पर बैठ करके निर्दोष चर्चा स्वाध्याय करने से होगा ना, करो सामने करो, दूर दूर बैठ के क्या कर रहे हैं? यही आप प्रभावना है, आपकी दृष्टि में सर्वजन एक होना चाहिए, जो विकल्प बैठा है ना ये आपको शांति से बैठने नहीं देगा। उनकी ऐसी क्या है, खुद तो बढ़ते नहीं। स्वाध्याय करना चाहिए और स्वाध्याय करने से देखो कितनी कितनी सारी बातें पता चलती हैं। इसको 10 बार पढ़ने वाला ज्ञानी भी दोष करता है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, उनसे कोई भूल नहीं हो सकती है क्या? 10 बार पढ़ करके भी कोई भूल हो सकती है, और इसीलिए चिंतन मनन और चर्चा के साथ इसका स्वाध्याय होता है तो किसी को भी शंका रह नहीं सकती। और अब ऐसा हो रहा है, मुझे इसको स्वाध्याय इसलिए लेना पड़ा, हमारी चर्या पहले कुछ और थी और कुछ नंतर बदल गई। वो बदली वो सामान्य नहीं है, उसके पीछे अमोघ विचार हैं, उनको सुनो, अमोघ विचार हैं उनको सुनो, सुन करके फिर शास्त्र में देखो। हम कहते हैं कि आप पढ़ के सुनाओ हम चलते हैं, पर शास्त्र से चलेंगे हम, साधुओं को देख करके नहीं चलेंगे हम, क्या भरोसा कहां पर क्या हो रहा है? दूसरे की चर्या हमारे लिए आगम नहीं है, आगम हमारे लिए आगम है, तो आगम सामने होते हुए क्यों हम दूसरे की चर्या देख करके अपनी चर्या बना ले? क्या हम रूढ़िवादी बने? रूढ़िवादी साधु को रूढ़िवादी, साधु रूढ़िवादी बन गया तो तो उसकी चर्या बच ही नहीं सकेगी, उसका सम्यक, उसका ज्ञान, उसका चारित्र टिक ही नहीं सकेगा। महावीर भगवान दिगंबर थे इसलिए हम दिगंबर बने। हम सोचेंगे ना दिगंबर क्यों बनना होता है, क्या बनना होता है, बनने पर क्या परिस्थिति हमारी होगी, और भगवान ने ऐसा कहा है तो क्यों कहा है, दिगंबर बनने में सुख है कहा उन्होंने और खुद बन गए, तो क्या महावीर को देख करके ही केवल हम दिगंबर बनेंगे, महावीर के वचन नहीं पढ़ेंगे, महावीर के वचन पढ़ने पड़ेंगे मुझे तब श्रद्धा होगी, केवल कॉपी मारूंगा तो ऐसा कॉपी तो सभी मार सकते हैं, एक बालक भी कॉपी मार करके मुनि बन जाता है और ऐसा अंजुली बांध करके आता है, मम्मी आहार दो मैं मुनि हूं, तो कॉपी मार करके कर रहा है। मम्मी के पास जाता है और मुझे आहार दो हाथ में, मैं मुनि बन गया। तो कॉपी मार करके मुनि बन जाए तो कल्याण नहीं होता, शास्त्र को पढ़कर विवेक ज्ञान उससे निकालकर जो यथार्थ है, जैसी भी वस्तु स्वरूप उसमें व्यवस्थित बैठ जाता है उसको समझ करके चलना है, यही मार्ग भगवान ने बताया। भगवान ने बताया कि अपने बताए हुए वचनों को विवेक से ग्रहण करो, मक्खी का मक्खी ग्रहण मत करो, जैसा का तैसा उसका पालन करो, लेकिन विवेक लगा करके पालन करो, और वह विवेक अगर ना हो तो फिर मक्खी का मक्खी पालन करना तो आसान है। फिर उसमें अपेक्षाएं मालूम नहीं रहेंगी और बात यहीं पर अटक जाती है, एक मक्खी का मक्खी करता है और एक विवेक से करता है, इसमें फर्क आता है, एक जैसा का तैसा आचरण, उसका चिंतन नहीं, मनन नहीं, ऐसा कहां है ना हम वैसे चलेंगे, हम आगे कुछ नहीं जानते, और एक क्या करते हैं उसमें सोचेंगे, विवेक से चलेंगे, अगर ऐसा भी कर सकते हैं उसमें कोई दोष नहीं लगता, उसमें कोई आश्रव बंद नहीं होता, तो ऐसे भी चलते, ऐसे चलने में क्या दिक्कत है, भगवान ने तो विवेक से चलने के लिए कहा है, तो विवेक से चलने वाला विवेक से चलता है और जैसा का तैसा चलने वाला जैसा का तैसा चलता है। पर ये मन में विचार आना बहुत गलत है कि वो सब ऐसे ये सामान्य लोगों के विचार ऐसे ही रहते हैं, क्या करें उसकी, तथास्तु कहना तथास्तु कहना ठीक ठीक
है। भावना ऐसे भी हो सकता है एक ही संग के होने के बाद अलग अलग चर्य क्यों है, अलग अलग चर्य क्यों,
वही तो कह रहे हैं ना, वही तो उत्तर मिल गए ना, अभी जो कहा वही कहा,
नहीं उनका यही है, उनका ये उत्तर
फिर हमसे पूछे और मूलाचार खोल करके हमने हमारे सामने बैठेंगे, या तो वो पढ़ के सुनाए या तो मैं पढ़ के सुनाता हूं, सुनने के लिए तो राजी हो जाए पहले, वो भी नहीं करते वो क्वेश्चन लेके बैठे हैं मजबूत कि एक चर्य ऐसे और एक चर्य ऐसे दो क्यों, अरे तो ऐसे तो कई जगह हम अलग अलग होंगे, हाँ एक का थोड़ा लेते समय ज्यादा गिरता है और एक का बिल्कुल नहीं गिरता है, और ऐसे फर्क क्यों तुम लोगों में इसमें सही क्या है आप उसको पकड़ के बैठेंगे काम नहीं चलने वाला, अब कोई समस्या हो उनके हाथ में वो गिरता ही है, हजार बार प्रयत्न करने पर भी रुक नहीं रहा है, तो अलग अलग चर्या तो आप समझ ही रहे हैं उसको शास्त्र में क्या लिखा है, गिराना नहीं चाहिए, क्या तो गिराना नहीं चाहिए, तो एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए आप क्या है उसका टेंशन लेके बैठे हैं कि एक बूंद भी नहीं गिरता है और ऐसा जो लेते हैं और वास्तव में एक बूंद भी नहीं गिरता है तो उनको कहते हैं ये सही चल रहा है। अगर किसी के हाथ से गिरा वो चर्या नहीं। अरे उनकी समस्याएं हैं, समस्या नहीं समझ पा रहे हैं। और भगवान कहते हैं जिसके हाथ से एक बूंद भी नहीं गिरता है उनको दीक्षा नहीं लेना चाहिए। निषेध किया है, ऐसा तो नहीं किया है। भगवान ने कहा कि अंधश्रद्धा ही चलती है उसमें। भगवान ने कहा विवेक से, देखो खाते समय गिरना नहीं चाहिए, इतना कहा। अब हमसे जितना बनता उतना ही होगा ना। उसके तुम रूढ़ीवादी बन जाओगे उसके पीछे, तो यहां कैसे चलेगा। और तुम खुद भी ऐसा कर नहीं पाओगे। आप भी प्रैक्टिस करोगे घर में लेकर के, मेरे से गिरता है कि नहीं देखो। अगर गिरता हो तो आप दीक्षा ही कैंसिल करोगे। तो ये विवेक पूर्ण बात नहीं है। विवेकी व्यक्ति वो होता है मेरे से कितना गिरता है, कम से कम गिरता है चलेगा, ज्यादा नहीं गिरना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, बस इतना है। भगवान ने क्या ऐसा आपको वो किया कि एक बूंद गिर गया तो तुम साधु ने ऐसा कोई जजमेंट दिया क्या? नहीं, विवेक से करना है, क्योंकि गिरने से भी आश्रव बंद होता है। गिराना ठीक नहीं, हम गिराए बिना खा सकते हैं और गिरा के खा रहे हो तो बंद तो होगा, और गिराना नहीं चाहते हैं तब भी संभलने पर भी गिर रहा हो तो उसमें बंद नहीं होगा। तो अपने विवेक पर डिपेंड है ना, हमारे सावधानी पर वो डिपेंड है। साधु तो सावधान ही रहता है, सावधानी को छोड़ करके कोई साधु कुछ नहीं करेगा।
द्रव्य के भेद को कहते हैं सर्वेक्षण, विद्वेषण और शुद्धाशन।
सर्वेक्षण,
विद्वेषण,
विद्वेषण
और शुद्धाशन।
शुद्धाशन
ये क्रमशः एषणा समिति से शुद्ध निर्विकृति रूप और व्यंजन रहित ऐसा जानो।
निर्विकृति रूप और व्यंजन सहित,
व्यंजन रहित,
व्यंजन रहित ऐसा
जानो।
उसका डिटेल
सर्वेषण च शब्द से असर्वेषण, विद्वेषण च शब्द से अविद्वेषण, शुद्धाशन और च शब्द से अशुद्धाशन ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अर्थात गाथा में तीन चकार होने से प्रत्येक के विपरीत का ग्रहण किया समझना चाहिए। एषणा समिति से शुद्ध आहार सर्वेषण कहलाता है।
एषणा समिति के 46 दोष हैं। 46 दोषों का न होना ये शुद्धाशन कहलाता है। शुद्धाशन यानी दोष रहित होना शुद्धाशन है।
तथा विकृति
एक बात देखो, ये सुनो, इसमें लिखा है ऐसे श्रेणी से सात घर हैं, श्रेणीबद्ध सात घर। तो श्रेणीबद्ध का मतलब थोड़ा दूर दूर भी रहेंगे, रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। और श्रेणीबद्ध सात घर हैं, श्रेणीबद्ध सात घरों का आहार ग्रहण, आया हुआ आहार जिस चौके में साधु पहुंचे हैं उसमें से मतलब एक घर में पहुंचे हैं, तो बाहर से आया हुआ आहार को साधु ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं तो उसको भी बता दिया है। भात आदि सब पदार्थ जो भी आहार सामग्री है वह बाहर से कोई श्रावक लाता है और साधु का जिस चौके में आहार हो रहा है वहां देते हैं तो साधु उसको ग्रहण करते हैं, दोष नहीं। उन्होंने कितने घरों का कहा? सात घर का। पर उन्होंने ये कहा कि श्रेणीबद्ध होना चाहिए, तो श्रेणीबद्ध क्यों कहा? इसका चिंतन करना पड़ेगा। हाँ वही ईर्यापद मतलब इधर उधर से बहुत दूर से आएंगे तो ईर्यापद समिति से नहीं आ पाएंगे,
नहीं
हाँ, निर्यापद शुद्धि से नहीं आ पाएंगे, यानी रोड खराब हो ये भी हो सकता है, जीव जिसको नहीं दिखते, जिस श्रावक को जीव नहीं दिखते, या जिस श्रावक को यही पता नहीं कि निर्यापद समिति से जीव रक्षण करते हुए ले जाना चाहिए, तो ऐसे श्रावक भी आ सकते हैं। तो ऐसे श्रावक जो विवेकहीन हैं, वो बाजू के चौके से भी आ रहे हों और चौके के भीतर भी प्रवेश कर चुके हों, तो नीचे तो देखेंगे ही नहीं, वो तो पास से भी आ जाए या कहीं दूर से भी आ जाए। विवेकहीन दाता, विवेकहीन दाता वो तो हिंसा करेगा ही, किंतु दाता को विवेक सहित होने के लिए इसका स्वाध्याय अनिवार्य है क्या नहीं? क्या ये निर्णय ले लें कि दाता को तो मूलाचार पढ़ना ही नहीं चाहिए? वो तो मुनियों का है, मुनियों का है, और मुनियों को भी मूलाचार दाताओं को पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि सब दोष पता चलते हैं तो वो सब पालन नहीं होता, अज्ञानी रह करके ही देना चाहिए। वो जो कुछ भी होता है वो आंख मिच के होता है ना, तो पाप बंद नहीं होता। बिल्ली चाहे आंख मिच करके दूध पिए, आंख खोल करके पिए, पेट तो भरेगा, दोनों में पेट भरता है। तो श्रावक अज्ञानी बनकर के आहार दें या विवेकहीन होकर के आहार दान दे, बंद तो होगा। और ये पिंड शुद्धि अधिकार हम तो बताते हैं सभी साधुओं को पढ़ाना चाहिए, सभी साधुओं को श्रावकों के लिए अध्ययन कराना चाहिए। आचार्यों ने लिखा है, फालतू लिख करके रखा है क्या? रखने के लिए रखा है, लिखा है क्या? पढ़ने के लिए लिखा है? आहार चर्या एक मेन चर्या है, इसमें कैसे कैसे दोष आते हैं इसको पढ़े बिना तो समझ में आने वाला नहीं है, और पढ़ने के बाद समझ में आ गया तो उसमें 40 दोष लिखे गए हैं। 40 दोषों में जितना आप उनको ध्यान रहता है, कुछ दोषों से तो बच करके आहार देगा, और जो जो भूल गए उतना तो भूल गए। एक दिन हम उसको भी कवर करेंगे कि इसको भी नहीं लगाना, इसको भी नहीं लगाना, इसको भी नहीं लगाना, कोई भी दोष लगाए बिना आहार देंगे। पर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे तो कितने दोष लगेंगे, और पढ़ने के बाद कितने दोष कम होंगे, और फुल पढ़ने के बाद विवेक के साथ देते हैं तो उस समय कितने दोष लगेंगे, इसमें फर्क है क्या नहीं? पढ़ने को व्यर्थ कह सकते हैं क्या? भगवान ने दिव्य ध्वनि से इसका उपदेश दिया, तो ये श्रावक के दोष हैं। उद्गम दोष किसके हैं? श्रावक के। तो उद्गम दोष कितने लग रहे हैं ये तो अध्ययन करो, उत्पादन दोष छोड़ो, साधु के अधीन है और साधु सुधार लेंगे वो, पर उद्गम दोषों में कितने कितने दोष आ रहे हैं ये तो देखो। हम पर का द्रव्य लेकर के कर रहे हैं क्या नहीं? भंडारा टाइप का आहार चल रहा है क्या नहीं है? ये देखना चाहिए क्या नहीं है? सभी लोग आए, इन्होंने एक चीज लाए, इन्होंने एक चीज लाए, इन्होंने एक चीज लाए, और एक जगह जाकर के एक कमरे में आहार पका लिया, ये दोष है क्या नहीं? क्या गुण समझते इसको है? इसको गुण समझना हो तो अविवेकी है। और ऐसी चर्या जहां भी चलती हो और बहुत जगह चलती हो तो आप कहेंगे वो चर्या ठीक है, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं, तो बहुत लोग करने से चर्या ठीक हो जाती है। और कहीं एकाध जगह भंडारा नहीं चलता, स्वयं अपने अपने द्रव्य से आहार निर्माण कर रहे हैं, तो वो गलत है। आप ऐसे क्यों बनाते हो? सब जगह तो ऐसे चलता है, चलता है ये चलाओ, ऐसा होगा क्या?
पंचम काल है,
ये जिनागम है, जिनागम के सामने यथावत चलना पड़ेगा, नहीं वहां तो ऐसा नहीं चलता। इसकी चर्चा मत करो, आगम में कैसे चल सकता है इसकी चर्चा करूं ना। किसी की चर्या को देख करके तुम दूसरे की चर्या को तुलना करते हुए सही गलत का निर्णय लेके बैठ गए, ये किस कैसी अनभिज्ञता। ऐसा नहीं होता, ये अविवेक कहलाएगा। आप सीधा मूलाचार में जाओ और एक एक दोष को पढ़ो और उन दोषों को त्यागते जाओ और फिर मेरे पास आओ, आप जैसा देंगे वैसा लेंगे। मूलाचार पढ़ करके आए हो तो जैसा देंगे वैसा ही लेंगे। केवल 16 उद्गम दोष हैं, वो उद्गम दोषों को टाल कर आप आहार दान साधु को दें। ये तो होता नहीं, क्यों नहीं होता, प्रमाद है। और वो प्रमाद की पुष्टि जहां जहां से भी होती है वो प्रमाण इकट्ठा करके अधिक से अधिक देखो प्रमाद प्रमादी कैसा रहता है, प्रमादी के लक्षण कैसे रहते हैं। जहां जहां ये भंडारा सिस्टम चलता है वहां वहां जाएंगे और वो प्रमाण इकट्ठे बहुत सारे हो गए, 8-10 जगह, 15 जगह, 100 जगह हो गए, तो देखो सब जगह चलता है ये, यही नहीं चलता, ये गलत है। ऐसा निर्णय लेना ठीक है क्या, विवेक है क्या, इसमें कौन सा दोष लग रहा है? पर द्रव्य ग्रहण दोष लग रहा है, पर द्रव्य ग्रहण दोष लग रहा है। और जो दाता, यानी वहां 10 मिल गए, 10 पड़गाएंगे, 10 आहार देंगे और 10 मिल गए, अपनी अपनी वस्तु को ले आए। एक दाता तो घी को ही ले आए, तो उस दाता से ये पूछा जाए तुम केवल घी खाओगे क्या साधु के आहार होने के बाद? हम पूछते हैं केवल वो घी खा करके ही जाएगा क्या? तो वो घी जो लाए और वहां तपाया, ये साधु के उद्देश्य हो रहा है क्या? नहीं है, है? तुम घी लाए, क्यों लाए? और साधु यहां आने के बाद ही हुआ ये, उससे एक दिन पहला नहीं हुआ, उससे पीछे कभी नहीं हुआ, और उसी कमरे में 10 लोग कभी नहीं मिले, कभी भोजन बना करके एक दिन भी नहीं खाए, और जब साधु आए तभी आए वो। यानी मतलब हर चीज साधु के उद्देश्य ला रहे कि नहीं ला रहे, तो ये प्रमाद है। और ये अगर 100 जगह चलती हो वो सही चर्या, और कहीं एक आध जगह वो नहीं चल पा रही है तो ये गलत चर्या। ऐसा निर्णय लेकर के हम चल सकते हैं क्या? कर्मों के आश्रय और बंद से बच सकते हैं क्या?
हाँ, चार सहेलियां मिलके लगा सकती,
क्या क्या बोले?
चार श्रावक अपना खर्चे साफ करके चौका लगा सकते कैसे?
नहीं, गलत है, द्रव्य का मिलावट नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा कर सकते कि आप अलग से एक व्यक्तित्व रूप से एक ही व्यक्ति का द्रव्य हो और एक ही द्रव्य का एक ही व्यक्ति का सब कुछ हो,
हैं?
तो फिर चार लोगों को आप निमंत्रण दे सकते हैं, वो भी जघन्य सुपात्र है, मध्यम सुपात्र, निमंत्रण दो उनको, निमंत्रण दे दो। नहीं, सहायता अलग बात होती है, द्रव्य इनका और देने के लिए मात्र आए हैं, इसका नाम सहायता। द्रव्य एक का है और बाकी लोग देने ही तो आ गए हैं, सोले का कपड़े पहन करके केवल देने के लिए, तो उसका नाम सहायता है। सहायता का अर्थ ये नहीं कि द्रव्य को भी देना चाहिए, नहीं, द्रव्य देने का क्या
भावना रहती है उसे देने की?
किस क्या देने की? आहार पदार्थ देने की भावना रहती है, तो यही तो भावना गलत है कह रहे हैं ना। भावना यदि है तो आप अपना चौका लगाइए, हर वस्तु आपकी हो, हर वस्तु, हर वस्तु खुद की हो तो आप स्वयं लगाई, दूसरे के यहां खड़े हो गए, नहीं गलत है। और ऐसे सौ जगह चलता है तो मेरे को नहीं चलता है तो आप मेरे को गलत कह रहे हैं, तो मैं गलत थोड़ी रहूंगा, मैं तो आगम से चल रहा हूं, मैं आसरा और बंध से बचना चाहता हूं। तो वस्तु हेल्प करना, ये दात जिसको हेल्प करते हैं आप उसको दोष लगता है, उसको लेकर देने में कौन सा दोष लगता है, आया था ना पर वस्तु ग्रहण दोष। तो आप भावना से दे रहे हैं, भावना को किसके प्रति रखा है आपने, साधु के प्रति, पात्र के प्रति भावना रख करके दे रहे हैं, तो पात्र के प्रति ये तो भावना रख रहे हैं, यही गलत है ना। पात्र के उद्देश्य ही ले आए उस वस्तु को, तो औद्देशिक वस्तु हुआ कि नहीं हुआ। वो शास्त्र में बता रहे हैं कि खुद के लिए लाओ, पहले बाजार जाओ, खुद के लिए चीजें खरीद के लाओ, और बाजार जाते समय भी मैं इस वस्तु को साधु के लिए ले जा रहा हूं ये कहना भी औद्देशिक वस्तु है। वो इससे बचो पहले, ये दोष बहुत लग रहे हैं, सबसे ज्यादा ये लग रहे हैं, इससे बचो ना। इसको बार बार पढ़ो, चिंतन मनन करो, बच सकते हैं। ज्ञान आएगा तो बच सकते हैं, ज्ञान नहीं रहेगा तो कैसे बचेंगे आप। सभी पदार्थ खुद का ही होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, सभी पदार्थ खुद के होते हुए भी प्रत्येक पदार्थ में साधु विराजमान है। महाराज ये लाएंगे हम ये बनाएंगे, महाराज ये लेंगे ये बनाएंगे, ये लेंगे ये बनाएंगे, उद्देश्य हुआ। आगम में ऐसा नहीं कहा जा रहा है हमको अपने लिए ये बनाएंगे, इसको साधु को भी देंगे, हम अपने लिए ये बनाएंगे इसमें से साधु को भी देंगे, इसमें आपको बंद नहीं होगा, कोई भी दोष नहीं लगेगा। आहार निर्माण जो होता है वो साधु के निमित्त से न हो, आहार को जो लाना होता है वो साधु के वास्ते न हो, ये बताया जा रहा है। और इससे बचना सबसे पहला आवश्यक है, सबसे बड़ा दोष है तो ये है। और इसी एक दोष से बचने के लिए उसके 16 भेद बन गए। एक एक दोष को आप विचार करके देख लो, औद्देशिक उद्देश्य को बचाने के लिए, यहां तक कि एक बर्तन को भी आप नया लाए हैं घर में और बाद में आपके गांव में साधु आ गए और वो बर्तन याद आ गए आपको, कल ही हमने बर्तन नए लाए हैं, इसमें पहला पका करके साधु को देंगे फिर बाद में हम खाएंगे, संकल्प उनका हो गया। यहां तक इसको भी नहीं करना कहा है, बर्तन आपका है, आपके घर में रहने वाला है, आप ही उससे आप ही खाने वाले हैं, वो बर्तन खराब होने तक आप खुद खाने वाले हैं, उस बर्तन में पकाए हुए आहार को जब तक मैं साधु को नहीं दूंगा तब तक मैं उपयोग नहीं करूंगा, मैं खाऊंगा नहीं, ऐसा संकल्प भी दोष है। खाने पीने की वस्तु में ही दोष ऐसा नहीं, बर्तन कोई चम्मच कोई पात्र ग्लास हर चीज से बचो कह रहे हैं, साधु के उद्देश्य मत करो, तुम अपने लिए स्वाभाविक रूप से बनाओ और यदि वो शुद्ध है तो साधु की प्रतीक्षा करो, उसमें से 10% साधु को देना है, बाकी पेट भर अपने को खाना है। और साधु के लिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि श्रावक के यहां जाते हो तो भ्रामरी वृत्ति से खाना, और भ्रामरी वृत्ति क्या है, उस पदार्थ की मात्रा को देख करके खाओ, साधु श्रावक को श्रावक दुखी न हो बाद में कि मुझे थोड़ा बच गया अब मुझे पुनः बना करके खाना पड़ेगा, समस्या खड़ी ना हो। वो समस्या भी खड़ी नहीं होना चाहिए ना कि बेचारा अपने निमित्त से बाद में चक्कर में पड़ जाए कि पुनः खाएं और सर्विस वाला हो तो उसको लेट होगा, उसको टेंशन आएगा, और जितना है उतना खा के जाएगा तो भूख लगेगी, ये दुख नहीं है क्या? आपको भूख लग गई तो हमारे निमित्त से भूख लगी कि नहीं? हमने ज्यादा ले लिया उसमें से आहार, इतना सूक्ष्म सोचते क्यों नहीं? नहीं, साधु को बना के खिलाएंगे, बाद में बना के खाएंगे, तो साधु के उद्देश्य बनाओगे, हर चीज उद्देश्य होगा, इसका तो पालन होता नहीं। और बाकी सब जहां जहां जो जो चर्या देख करके आते हैं उसको किसी एक पर थोप देते हैं तो ये कब तक चलेगा? प्रयास तो ये करना चाहिए कि हम ज्ञानी बन करके आहार दान दे, विधिवत आहार दान दे, और वो विधि महत्वपूर्ण है, देते समय और बनाते समय विधि महत्वपूर्ण है, पढ़गाते समय भक्ति महत्वपूर्ण, पढ़गाते समय नौ भक्तियां हैं और देते समय और पकाते समय ये विधि है, 16 उद्गम दोषों से रहित भोजन निर्माण करना ये विधि है। इस विधि का ज्ञान अगर नहीं करोगे तो साधुचर्या भी डूब जाएगी और दाता की विधि जो आगमुक्त विधि है वो भी डूब जाएगी, और केवल नव भक्ति करके आहार देने से आहार दान नहीं होता। ये कौन सी बड़ी बात होगी कि आपने नमस्तु किया, पूजन किया, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल दिया? अरे मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि क्यों बोल रहे हो? कि आहार गलत नहीं है उसका मन शुद्धि बोल रहे हैं, मेरा आहार गलत नहीं है, विधिवत सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे वचन सही है, मैं काया से भी शुद्ध हूं, सोले से हूं, काया से भी सही हूं, इसलिए महाराज आप मैं मेरी भक्ति को देखकर आहार स्वीकार करो। नव भक्ति में आहार शुद्धि भी एक भक्ति है और मन वचन काय भी, ये तीन अलग से भक्तियां हैं, यही चार हो गए। आहार शुद्धि मेन है उसमें, आहार शुद्धि अगर है तो मन वचन शुद्धि भी है, आहार शुद्ध नहीं है तो मन वचन काय शुद्ध भी नहीं है। तो झूठ बोल करके आहार दे रहे हैं, झूठ बोलकर। एक दिन हमने पूछा ना, वो उदाहरण सुनाया था आहार होने के बाद, सुने ये किसके लिए बना था? पहले तो उन्होंने कहा कि सभी हम अपने परिवार के लिए बनाए थे, तो हमने पूछा इसमें मेरे को एक भी वस्तु नहीं बनाया आपने? नहीं नहीं, सभी आपके लिए ही बनाया था। डर करके तो शायद उन्होंने समझा कि महाराज के लिए बनाना होता है। हम टेस्ट करने के लिए पूछ रहे थे, डर के मारे बोल दिया उन्होंने, लेकिन टेस्ट करके बोल रहे हैं ये समझ में आना चाहिए ना, लेकिन ये ज्ञान पक्का नहीं था, इतना ही था कि खुद के लिए बनाना है, और क्यों बनाना है ये मालूम नहीं है, मालूम नहीं था उनको। तो इसलिए प्रत्येक श्रावक को जो दाता है, दाता को 16 उद्गम दोषों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ये दोष आता है तो अपने को कैसा भी दो आप, सभी मान्य, पर 16 से बच करके दो। पर वस्तु ग्रहण, थोड़ी अपनी वस्तु ले जाकर के पका के देना, ये सब छोड़ो बातें। किसी की चौकी में पहुंच गए, पका लिया एक आध वस्तु, एक दो फल लाए, लगा लिया फल को, दे दिया। अब दूसरी चौक में गए हैं, आप केवल फल ही खाते हैं क्या, भोजन नहीं करोगे? तो स्वयं चौका लगाओ ना, हर चीज लाओ, हर चीज को तैयार करके खुद खाने का संकल्प करो उसमें, और उस हर चीज को साधु को दे। साधु को देने के उद्देश्य से फल लाए, और भले ही उसमें से एक आप खाओ और एक साधु को दे, लेकिन दो तो लाए हो ना, एक महाराज को और एक खुद को। शुद्ध भोजन है नहीं, गलत है वो। आहार दान का डब्बा रखा तो साधु के उद्देश्य रखा क्या? नहीं, कैसे चलता है वो? बहुत गलत है वो। उस डब्बे का पैसा लेकर आहार बनाया तो साधु के उद्देश्य पूर्वक ही हुआ वो। अगर साधु को पता चला तो साधु नहीं लेंगे उसको। हाँ, रसीद भी देते हैं। और साधु भी यदि ऐसा विचार करें कि श्रावक तो श्रावक है, कैसे भी बना सकता है, हमको कुछ विचार नहीं करना चाहिए और न ही ज्ञान देना चाहिए और न ही अवधि ज्ञान लगाना चाहिए। सुन रहे?
सुनो,
चर्चा आपस में होने लगी। साधु अगर ऐसा सोचने लगे तो कुछ नहीं सोना, श्रावक के दोष ही नहीं देखना चाहिए, तो उनको बंद नहीं होगा क्या?
यहाँ तो बोले आहार दान औषित दान ये चार दान तो बोले आगम में बोले। अगर किसी श्रावक ने आहार दान को पैसे दिए थे उसमें उसको बंद कैसा होगा?
उद्देश्य हुआ इसमें, औद्देशिक दोष लगा। आहार दान के उद्देश्य ही दे रहा है ना, वो किसको दे रहा है? साधु को। हाँ, वो साधु को आहार के निमित्त से कोई पैसा देता है, कोई धान्य देता है, और कोई दूसरा दाता उसको लेकर के आहार पका के साधु को देता है, ऐसा ही है ना? तो ये दोष नहीं है क्या? इसी को दोष बता रहे हैं। ये औद्देशिक दोष है। ये कौन सा दोष? औद्देशिक। औद्देशिक यानी उद्देश्य पूर्वक देना। साधु को कौन सा आहार चलता है? आप स्वयं जो घर में खुद के लिए पकाते हैं उसमें अतिथि समीभाग करो, जो खुद के लिए पका हुआ है। साधु को तो पकाने का काम ही नहीं है, आगम में विधान ही नहीं है। साधु के उद्देश्य से पकाने का बिल्कुल चर्चा ही नहीं है। अगर पका लिया तो वो महादोष। और दूसरी बात, आपने किसी को पैसा दिया या वस्तु दे दिया, ये महाराज को दे, ये तो महादोष बता रहे, महादोष बता रहे हैं। औद्देशिक दोष पहला दोष। तो फिर कैसे दे हम? आहार दान देना है तो फिर उद्देश्य पूर्वक ही होता है ना, ऐसा क्यों सोच रहे? नहीं, उद्देश्य पूर्वक नहीं होता। आप खुद अपने लिए पकाओ। आप रोज चार रोटी खाते हैं एक बार में, एक बार भोजन दो बार करते हैं, लेकिन पहली बार में मान लो चार रोटी खाते हैं, चार ही रोटी पकाना, वहां साधु के लिए एक भी रोटी अधिक नहीं पकाना, ये निर्दोष है। और चार रोटी में से साधु को आधा दो या एक दे दो, उतना ही। आप तीन खाओ, साधु को एक दे दो, खुद भी भूखे मत रहो और साधु को भी भूखा मत रखो। उसमें से अतिथि समीभाग करो जो खुद के लिए पका है। और ऐसे ऐसा आहार अगर आप पांच छह सात लोग घर में हैं और सात लोगों का आहार पका हुआ है तो सभी लोग पड़ जाएंगे, और छह लोगों के हिसाब से वह पका हुआ है तो एक साधु का आहार आराम से हो जाता है। अतिथि समीभाग का जितना हिस्सा जाना चाहिए वो जाने के बाद एक साधु का आहार पेट भर हो जाता है। और यदि व्यक्ति घर में अकेला हो तो उसमें से क्या अतिथि समीभाग करेगा? क्या करेगा, कितना करेगा, और उनके लिए तो पकाना नहीं है, निषेध ही है, तो उसमें से कितना देगा, कितना देगा उसमें से, बाकी लोगों को निमंत्रण देगा। मान के चलो चार लोगों को, पांच लोगों को निमंत्रण दिया, तो जिन लोगों को आपने निमंत्रण दिया वो निमंत्रण क्यों देना पड़ा आपको, क्या उनके घर में आहार नहीं रहता है, उनके घर में क्या आहार नहीं पकता है, पकता है वो दान के प्रकार आपको बताया, लेकिन दान कैसा देना ये जो बताया है उसमें गुण दोष का ज्ञान कराया गया है। चार प्रकार का दान है, दान किसको देने वाले, साधु को, पर कैसा देना, स्वतः के लिए पका हुआ होना चाहिए, इतना इतने ध्यान में नहीं आ रहा आपको।
उनका कहने मतलब चार प्रकार के दान जो है किसी को देना, या आहार को देने का, आहार को देने का वो खुद के लिए कम बनाने का, उसमें का
साधु को पकाने का निषेध है, इतना समझ में,
पकाने का निषेध है,
ये समझ में आया कि नहीं, तो खुद के लिए पकाओगे, तो खुद के लिए पकाओगे तो हमको दोष ही नहीं आएगा, उसमें से कुछ भाग आपको देना है, यही दान है, यही आहार दान और निर्दोष दान है, ये खुद के लिए पक्के हुए भोजन में से कुछ भोजन साधु को देने का नाम अतिथि समीभाग है।
पर वस्तु से
रहित, सही आहार देना, पर के हाथ से नहीं देना, और बाहर से जो आते हैं ना वस्तुतः उनका यदि निमंत्रण हो तो बात अलग है, लेकिन निमंत्रण कोई नहीं देता, 100% हम जानते हैं कि कहीं भी 5-6 लोगों का निमंत्रण कभी किसी श्रावक के घर रहता नहीं है। क्या रहता है, हर रोज रोज चौका लगा रहे हैं, तो 5-6 लोगों को भी खिलाओगे, साधु को भी खिलाओगे, ये रोज चल सकता है क्या आपके यहाँ, सही बताओ,
नहीं चलता,
नहीं, नहीं जो सही है वो पचेगा नहीं,
प्रसाद लेकर के जाएंगे थोड़ा प्रसाद ले लो।
तो होता क्या है, वर्तमान की परिस्थिति हम जानते हैं, श्रावक की, श्रावक आहार पकाता है, साधु खाकर प्रसाद बच जाए 6 लोगों के लिए, तो श्रावक खुद प्रसाद खाता है और साधु को भोजन कराता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। और साधु को क्या संकेत है, तुमको भ्रामरी वृत्ति से आहार ग्रहण करो, और वो साधु देखता है मात्रा को, तो वहां पर मेरे खाने के बाद वो थोड़ा थोड़ा ही बचेगा सब वस्तु, तो वहां पर 6 लोग भोजन करने वाले बैठे, 6 लोगों के योग्य भोजन है ही नहीं, वो प्रसाद के योग्य है, 6 लोगों के लिए, 6 लोगों के लिए वो वस्तु प्रसाद के योग्य है, यानी इतना इतना ही खा सकता है, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी आदि चौथा भाग रोटी, और ऐसे प्रसाद खिलाओगे, तो इसका अर्थ ये हो गया, साधु को तो हमने 100% भोजन उद्दिष्ट बनाया है, बाकी उसमें से जो बचता है वो प्रसाद हमारा। अरे इससे उल्टा होना चाहिए, साधु को तो प्रसाद देना है, खुद पेट भर खाना है। हाँ, और ऐसे 6 लोगों का प्रसाद साधु को मिल गया, कहते हैं उनका एक का पेट नहीं भरेगा, भरता है? तो ये 7 घर का जो विधान रखा गया है वो इसी वजह से तो रखा है कि 7 घर का प्रसाद आ गया, क्या एक साधु का पेट नहीं भरता, आता है, भरता है, और उसको लाएगा तो डब्बा बना करके नहीं लाएगा, क्या खुला लाएगा, डब्बा बना करके आएगा, क्या केवल कपड़ा ढक करके आएगा? आज एक दिन आए थे, कपड़ा नहीं था। कौन आए थे वो? आज एक चौके में आए थे, कपड़ा नहीं था। हाँ, किसी ने बता दिया उनको। तो ऐसा नहीं होता, डब्बा चलना चाहिए, डब्बा बनाना चाहिए। डब्बा कैसा? एक करंट होता है ना, करंट बड़ा वाला, उसमें सभी कटोरियां रखो और हर चीज, भात से लेकर रोटी से लेकर सब्जी से लेकर जो भी आप खुद के लिए बना चुके हैं, उसमें से 10-10% उठा लो और उसको कटोरी में रख करके देने के लिए जाओ। ये निर्दोष आहार है, इसमें उद्दिष्ट दोष बिल्कुल नहीं लगता। साधु को देखे तो भ्रामरी वृत्ति पलती है और श्रावक खुद पेट भर खा करके सर्विस जा सकता है समय पर, पुनः बना करके खाना नहीं पड़ेगा। और पानी खत्म हो गया तो कुआं पर और दौड़ेगा, उसमें घंटा डेढ़ घंटा और निकलेगा। तो ये तो संकट है श्रावक पर। इस संकट से बचाने के लिए साधु को क्या कहा? भ्रामरी वृत्ति से आहार करो। गृहस्थ किसी भी प्रकार से दुखी ना हो, गृहस्थ किसी भी प्रकार से साधु के आहार करने पर वो समस्या में ना पड़े कि मेरा आहार खत्म हो गया तो मुझे और थोड़ा बनाना पड़ेगा। और मान लो वो एक ही बार खाने वाला हो, संकल्प हो गृहस्थ, उसका नियम हो, तो थोड़ा कैसे खाएगा उस दिन? और कल चतुर्दशी है, उपास करने वाला हो तो संकट में पड़ गया ना वो, है? संकट में पड़ गया क्या? नहीं, वो और सर्विस पर भी जाना है आज, कल चतुर्दशी और आज थोड़ा सा भोजन बना है खुद के लिए, और पेट भर कर खा करके जाएगा तो साधु का पेट नहीं भरेगा, और साधु का पेट भरेगा तो समस्या में पड़ जाएगा। इधर कुआं और इधर खाई, दोनों समस्या है। इसी समस्या से बचाने के लिए ये कहा है कि कम से कम एक घर में 6 लोग हैं या 3 लोग हैं, तीनों लोगों को पेट भर खाने योग्य भोजन तैयार रहना चाहिए। वो निमंत्रण भी आप नहीं देते, उसके चक्कर में मत पड़ो। मालूम है कितना निमंत्रण देते? 6 लोगों को रोज खिला सकते हो आप, अकेले हैं, 6 लोगों को खिला सकते? और ये नहीं होता है इसलिए आप अपनी चीज ले जाकर के किसी चौके में दौड़ जाते हैं, पका लेते हैं और दे देते हैं, सबसे बड़ा प्रमाद है ये, और ये दोष है। किसी भी चीज को साधु के उद्देश्य आप दे नहीं सकते, और उन्हीं के उद्देश्य से उद्देश्य पूर्वक ही उनके घर गए कि इसमें से साधु को भी देऊंगा, मैं भी खाऊंगा, तो अकेली वस्तु खाओगे क्या? उससे पेट भरेगा क्या? तो घर में भोजन जाकर के नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप एक ही वस्तु, फल लेकर के गए हैं तो एक फल साधु को दोगे और एक फल खुद खाओगे, और इस पर से सब सर्विस के लिए निकल जा सकते, दिन भर एक फल के ऊपर रह सकते? फिर ये विधि गलत नहीं है तो क्या है? ये विधि गलत नहीं है तो क्या है ये? अरे ये तो महान दोष है, ये तो स्वयं भी कर्म बंद कर रहे हैं और साधु को भी कर्म बंधवा रहे हैं। इसलिए न खुद की विशुद्धि बढ़ रही है और न साधु की, क्योंकि मूलाचार के अनुसार उनको आहार नहीं मिल रहा है इसलिए विशुद्धि नहीं बढ़ रही है। ये नई चर्या है और नई बात है, ये कहीं चल नहीं रहा है, कहीं भी जाके देख लो आप, और देख के आएंगे तो महाराज सब जगह ऐसा ही चलता है, आपका क्यों नहीं चलता, यही पूछोगे आप अकेले ऐसे क्यों? हाँ, बहुमत में धर्म रहता है। ये प्रमाद नहीं करना, खुद चौका लगाओ। घर में 5-6 लोग हैं तो 5-6 लोगों के हिसाब से भोजन पकता है, एक साधु को पड़गा करके आराम से उनका आहार व्यवस्थित रूप से होता है। उसमें से दो। और सहायता, सहायता के लिए क्या, सहायता के लिए अगर आप लोगों को बुलाते हैं तो केवल उनसे सहायता ही लेना, उनको आहार देने के लिए आगे नहीं करना। वो आहार दे करके क्या सोच रहा है, मेरे को भी दान देने का मुझे भी फल लग गया। वो ये सोचता है कि मैंने भी दे दिया है, ये अनुमोदना हो गई है। नहीं, अनुमोदना ही नहीं हुई, बल्कि मैंने अपने हाथों से दिया है तो मुझे भी फल मिला ही है, ऐसा सोचता है वो।
कोई आएगा भी नहीं ना, मुझे तो नहीं रहती इतनी। हाँ, कोई आएगा भी नहीं ना सहायता करने के लिए।
नहीं आता है तो बहुत अच्छा है। नहीं, नहीं आता है तो बहुत अच्छा है, आप अकेले दे दो। और यदि सहायता के लिए कोई पहुंच भी जाते हैं तो केवल उठाकर देने का काम करना चाहिए, अपने खुद के हाथ से देने का प्रयास नहीं करना, पकड़ के खड़े रहो, इतना ही सहायता पहुंचा दो। हाँ, ये इतना ही काम करो। आहार देने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? स्वामित्व तो है नहीं, और पर का वस्तु दे करके ले करके अतिथि को देना, ये पर वस्तु ग्रहण दोष लग रहा है क्या? नहीं, फिर इसका विचार क्यों नहीं करते? पर वस्तु ग्रहण दोष लग रहा है फिर भी विचार नहीं कर रहे? नहीं, सहायता के उद्देश्य जाए हैं तो कोई गलत नहीं, सहायता ही करो, लेकिन वस्तु की सहायता नहीं, सहायता शारीरिक सहायता, उठा करके उनको देना उनके हाथ में, दाता दे और दाता के हाथ में आप उठा करके सहयोग दे सकते हैं, फिर पर वस्तु ग्रहण दोष भी नहीं लगेगा, पर वस्तु ग्रहण दोष नहीं लगेगा। आजकल कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं है? कुछ सुधार आया है कि नहीं? क्या वही चल रहा है कि उधर का एक चीज ले लो, इधर का एक चीज ले लो और तुम भी आओ, सब मिलके खाएंगे? ऐसा चल रहा है क्या? ये कभी नहीं चलाना, साधु को भी बिगाड़ दोगे, उनकी चर्या बिगाड़ दोगे और खुद भी, खुद की चर्या, दान विधि भी बिगड़ जाएगी, तो इससे क्या फायदा है? सदोष आहार लेना और सदोष आहार देने से क्या कर्म की निर्जरा होगी, फल लगेगा? विधि जितनी निर्मल होती है, विधि जितना निर्मल होता है उतना फल लगने वाला है, और विधि बिगड़ी हुई है और शब्दों में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है तो इसमें तो पाप लग ही रहा है, शुद्धि बोलने के बाद भी पाप लग रहा है, क्योंकि हर वस्तु में कोई शुद्धिकरण नहीं है, औद्देशिक है, पर वस्तु का ग्रहण है।
मुनियों के दिन दोष लग जाए, तपस्या के माध्यम से कर्म निर्जर नहीं हुआ?
तपश्चर्या तो यही कहलाती है कि शुद्ध आहार ले, ये तपश्चर्या है।
और कई लोग बताते हैं
अशुद्ध लेकर के तपश्चर्या में दोष नाश करने के लिए बैठे, पुनः दूसरे दिन वही दोष किया, फिर बैठे, तीसरे दिन भी वही दोष किया, फिर बैठे, तो यही करते रहोगे, दोष लगाना तपश्चर्या करना, दोष लगाना तपश्चर्या करना।
पांच बादाम खाएंगे
तो आश्रव पूर्वक ये निर्जरा है, प्रत्याख्यान है ही नहीं इसमें। विदाउट प्रत्याख्यान आहार ग्रहण करोगे, प्रत्याख्यान यानी दोषों का त्याग, दोषों का त्याग करके आहार ग्रहण करना चाहिए। तो दोषों का त्याग हम नहीं कर सकते, परंतु दोषों का त्याग करना, हमारा निर्दोष व्रत पालन करना, ये 16 उद्गम दोषों पर डिपेंड है। तो श्रावक को ज्ञान देना जरूरी है, आचार्यों ने जो लिख के रखा है फालतू है क्या? मूलाचार है, पढ़ना नहीं चाहिए क्या?
पढ़ना
चाहिए, इसको नहीं पढ़ोगे तो मुनि धर्म को आप टिका ही नहीं सकोगे, धर्म की रक्षा नहीं कर सकोगे। मुनिचर्या की जो रक्षा श्रावक करता है, दाता करता है, मुनिचर्या भी बचती है। सदोष आहार दे करके येष्णा समिति से तो रहित है वो आहार, दोषपूर्ण आहार दे दिया और साधु दोषी हो गए उससे, और उस दोष की पूजा करने बैठ गए, उदक चंदन तंदुल पुष्प गई। अरे सदोष आहार दिया और उनकी समिति जो येष्णा समिति थी, वो गुण थी, उस गुण को तो मिटा दिया और फिर दोष की पूजा करने के लिए आ गए। फिर येष्णा समिति को मिटा दिया और दोष की पूजा करने के लिए आ गए। तो दोषियों की पूजा से पुण्यासर होता है? अरे उनके गुण को बचाना आपके ऊपर डिपेंड था। येष्णा शुद्धि से आहार बनाना था, उस दर ध्यान ही नहीं दिया और पढ़ा करके दोष सहित आहार पूजा करके आहार दे रहे हैं, उनको दोषी बनाते बनाते आहार दे रहे हैं। प्रत्येक ग्रास दोष लग रहा है और फिर आहार भी देते जा रहे हैं। फिर ऐसे साधु की तुम वंदना भी क्यों कर रहे हैं, जब उनके पास दोष है वो ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है ये दोष है दोष है, फिर किस गुण की पूजा कर रहे हैं आप? गुणों की वंदना की जाती है ना। तो आहार से पहले जो पूजा की, किस गुण की पूजा की? येष्णा समिति की पूजा की या येष्णा दोषों की पूजा की? बताओ। प्रमत्तचर्या त्यागना चाहिए, प्रमाद नहीं करना। और ये ज्ञान ना होने से ये सब अध्ययन करना आवश्यक है। साधुचर्या मालूम नहीं है ना।
ईष्णा समिति से शुद्ध आहार सर्वेशन कहलाता है तथा विकृति पांच प्रकार के रस उनसे रहित आहार निर्विकृति रूप है, अर्थात जो गुड़ तेल घी दही और दूध तथा शाक आदि से रहित है तथा सोवीर भात का मांड या कांजी शुष्क तक्र मक्खन निकाला हुआ छाछ इनसे सहित आहार विद्वेषण है, अर्थात रसादि निर्विकृति आहार तथा मांड कांजी या छाछ सहित आहार विद्वेषण कहलाता है तथा कांजी व छाछ आदि से भी रहित आहार अव्यंजन है, जो पाक से अवतीर्ण हुआ मात्र है, किंचित भी अन्य रूप नहीं किया गया है, वह शुद्धाशन है, अर्थात केवल पकाए हुए भात या रोटी दाल या उबाले हुए शाक आदि जिनमें नमक मिर्च मसाला आदि कुछ भी नहीं डाला गया है, वह भोजन व्यंजन संस्कार रहित है, वही शुद्धाशन कहलाता है।
आसन के भेद हो गए कि साधु अगर नीरस ले रहा हो जिसमें गुड़ नहीं शक्कर नहीं कुछ नहीं, तो ऐसा एक आहार नीरस आहार अलग है। ऐसे कई भेद हैं उसमें। तो साधु अपनी परिस्थिति को देखकर मुझे किस प्रकार के आहार से संयम का पालन होगा इसका निर्णय करके उसमें से कौन सा आहार मुझे चाहिए वो आहार लेना शुरू करता है। साधु अपने विवेक से काम करेगा, संयम जिससे पालन होता है उसको। और यदि नहीं नीरस खाना ही वो बताया है, नीरस ही खाना चाहिए। अगर सतत साधु नीरस खाने लग जाए सूख जाएंगे, उनको आगे जा करके न सामायिक होगा न शक्ति रहेगी और शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। ज्यादा नीरस भोजन करोगे तो टेंशन में आ जाएंगे बाद में, शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, वो शुरुआत में ठीक लगेगा, बाद में गैस बढ़ेगी, बाद में अनेक प्रकार के रोग होंगे। शरीर के लिए जो चाहिए वो दिया जाता है, और जो नहीं चाहिए वैसा भी नहीं दिया जाता जो आवश्यक नहीं है। आवश्यकता किस चीज की कितनी, उसकी मर्यादा क्या, उसको समझ करके साधु आहार देते हैं। तो नीरस आहार को क्या कहते हैं, और ये वस्तु और दो तीन चीज ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, और सभी चीज अच्छी हो तो उसको क्या कहते हैं, ये सब उनका नाम रख करके उसका विश्लेषण किया। तो उसमें से साधु देखेगा कि इन छह में से कौन सा आहार आज मैं करूं, हमेशा करूं किसी एक ही प्रकार के आहार को, ऐसा निश्चित नहीं रहता। साधु को ये होता है कि आज की परिस्थिति के अनुसार मुझे क्या ठीक रहेगा संयम पालन के लिए, अपने स्वास्थ्य को अपनी देह की परिस्थिति को देख करके उस आहार का चुनाव कर लेता है। ये विवेक है। और साधु में विवेक ना हो तो कहेंगे देखो नीरस खाने के लिए कहा है तो हम तो कभी सरस नहीं लेते, और नीरस लेते लेते शरीर साथ नहीं दिया तो यहां तक संक्लेश हो सकते हैं, और ये तो ये मुनि व्रत बहुत कठिन है, ये हरेक की वश की बात नहीं है, ऐसा विचार आकर के दीक्षा छोड़ने तक भाव आ सकते हैं ज्यादा संकट आ गए तो। और दीक्षा छूट जाती कई लोगों की विवेक ना होने से ऐसा होता है, और शरीर को संभालते हुए जो आवश्यक अनावश्यक देखते हुए देते तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। तो अधिक त्याग अधिक तप अद्वा तद्वा विचार अद्वा तद्वा धारणा, इससे क्या होगा, चर्या बिगड़ेगी, बहुत दिन तक नहीं टिकेगी वो। और ऐसे साधु की चर्या श्रावक देख लेता, और ये वो साधु तो बिल्कुल नीरस लेती थी, ये महाराज तो सब लेते हैं, ऐसे अलग अलग क्यों एक सी चर्या होनी चाहिए, अरे आप दही दही लेते हैं वो दूध नहीं लेते हो आप, तो उनको ऐसा क्यों नहीं है। तो श्रावक भी अविवेकी, किसी साधु की किसी प्रकार की चर्या देख करके दूसरे साधु को देख करके ऐसा विचार करता है कि इनकी ऐसी क्यों नहीं, तो वो श्रावक भी अविवेकी है, उनको मालूम नहीं है कि परिस्थितियां क्या रहती है साधु बनने के बाद, सामने किस प्रकार से साधु चल सकता है, चलना चाहिए। कोई साधु बनकर के भी विवेक से भी चलता है और अविवेक से भी चल सकता है, अविवेक से अगर चलने लग जाए ना तो ज्यादा समय तक दीक्षा में टिक ही नहीं सकेंगे वो। नहीं तप है वो, तप है, हाँ उत्तर गुण है, नहीं है उत्तर गुणों को, उत्तर गुणों को शक्त्यानुसार पालन करना चाहिए, ये यथाशक्ति करना चाहिए। मूल गुण कंपलसरी रहते हैं, जैसे पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ती, उसमें एक ऐशना समिति भी है। अब ऐशना समिति में आप पूरी तरह से दोष लगाओगे तो हमारा मूल गुण ही गया, 28 मूल गुण में से एक गया। और आपको हम ये ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये विधि है, ऐसा ज्ञान देंगे तो हमको भी बचाओगे और खुद भी बचोगे दोष से, हमारी भी निर्जरा होगी आपकी भी निर्जरा होगी। तो साधुओं को ये पढ़ाना चाहिए 16 दोष श्रावकों के लिए।
कहते हैं 28 मूल गुण को निर्दोष पालन करो, उत्तर गुण बाद में पालन करो।
हाँ, मूल गुण पहले निर्दोष पालन करो कहा है साधुओं को, हाँ उत्तर गुण फिर बाद में। इसलिए साधु को, साधु क्या कर रहा है, ये नीरस ले रहा है क्या सरस ले रहा है क्या कर रहा है, ये मत देखो, वो तो अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा है। पर इनको हम, इनके पास ऐशना समिति है क्या नहीं ये देख लो पहले, और उनके पास ऐशना समिति तभी रहेगी जब ये 16 दोषों से बचा हुआ, ये 16 दोषों को टालकर आहार दोगे तो ऐशना समिति रहेगी, नहीं तो 27 मूल गुण रहेंगे। देखो 27 की पूजा करो। तो मूल गुण में दोष कौन लगा रहे हैं, श्रावक लगा रहे हैं, उनकी विधि बिगड़ने से हमारी चर्या बिगड़ गई। इसना समिति की जगह। तो ये सब सोच कर के ये सब पंचम काल में संभव नहीं है, ऐसा भी मत करो, अरे सब संभव है, प्रमाद छोड़ो तो सब संभव है। या तो ये साधुओं को देख करके ये निर्णय ले लो कि अरे वो तो उद्दिष्ट ही दे रहा था, वो उद्दिष्ट ही ले रहे थे पंचम काल में, तो मुनि होते ही नहीं, निर्णय ले लिया पंचम काल में मुनि नहीं बन सकते, मुनि होते नहीं, ऐसा भी कोई निर्णय ले सकता है ना कि वो यशना समिति के बिना मुनि कैसे, ये भी विचार करेगा क्या नहीं कोई अज्ञानी। तो इसके लिए अवकाश नहीं देना चाहिए। आहार विधि श्रावक के तरफ से ठीक होती है ना तो साधु के 28 के 28 मूल गुण अच्छे से पलेंगे, उनकी विशुद्धि बढ़ेगी, फिर उनको तपस्या करने में आपके आहार के माध्यम से शक्ति आएगी। किसी एक विघर में गए नहीं, हम बाहर से नहीं लेते, एक क्रम में नहीं है, स्ट्रिक्टली नियम ले लिया कि हम ऐसा हो तो लेते हैं, और ये जो है सामने है और इससे पास है, ये सामने से है, नहीं सामने से नहीं लेना चाहिए ऐसा लिखा है, तो मक्खी का मक्खी पालन कर रहे हैं, विवेक नहीं उसमें, उसको क्यों लिखा ये चिंतन नहीं, वो इसलिए लिखा है कि आप देख करके नहीं आ पाएंगे, इरियापति समिति बिगड़ सकती है, 16 बिगड़ सकता है, सिर्फ इतना उद्देश्य है। और कोई श्रावक 16 सुरक्षित रखकर इरियापति शुद्धि से आ रहा हो तो थोड़े से सामने से आने से क्या बिगड़ रहा है, भगवान सर्वथा के एकांत से निषेध करके रखे हैं कि इधर से आओगे तो तुम मुनि ही नहीं रहोगे, वो क्रम का टेंशन और आगे का टेंशन, दो टेंशन है। अरे टेंशन छोड़ के काम करो, विवेक से काम करो, पहले शरीर को देखो, शरीर को तपश्चर्या में लगाना है, कौन सा आहार कैसा ले और किस क्रम से ले, श्राव को ज्ञान दो ना, तुम कहीं से आओ लेकिन इरियापद शुद्धि से आओ, मुझे कोई दोष नहीं लगेगा और तुमको देने वाले को भी कोई दोष नहीं लगेगा, ये क्रम में क्या रखा है, क्रम में कोई जादू है कि क्रम से आने पर तो निर्दोष होता है और इधर उधर से आए तो सदोष हो जाता है आने मात्र से। अगर वो इरिया शुद्धि से सोले को संभालते हुए प्रासुक जमीन से आ रहा है, क्या तो वो देने का अधिकारी नहीं जो सामने वाला आ रहा है, ये टेंशन लेके क्यों रखा है, नहीं वो तो आगम में लिखा है, तो आगम में क्या लिखा है और उसको कैसा आचरण करना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या, उसके पीछे रहस्य क्या, इसको चिंतन किए बिना कर रहे तो घाटे में पड़ेंगे। तो क्या घाटे में पड़ेंगे, कभी तो उस लाइन से लगने वाले चौका भी किसी भी गांव में नहीं मिलेंगे आपको, एक बार भी नहीं मिलेगा आहार, कभी नहीं मिलेगा। और फिर खाओ, जिस घर में पहुंचे हैं वहां पर एक दो लोगों का भी भोजन नहीं था, और बाहर से तो लेना नहीं है क्योंकि वो सामने से आ रहा है तो हमने मना कर दिया, और इधर लाइन से कोई चौके नहीं, और फिर वहां पर जो बना है वो 30% भोजन बना है, रोज 30% खाना लौट के आना, रोज 30% खाना लौट के आना, रखो अपने स्वास्थ्य को ठीक, शरीर को ठीक, संयम पालन करने लायक, रख सकते हैं तो रखो, रख सकेंगे। और भ्रामरी वृत्ति का भी पालन होना चाहिए 30%, तीन लोगों का भोजन निर्माण है वहां तो 10-10% उठा लो वहां से, और ज्यादा खाने के अधिकारी नहीं आप वहां, और वहां पर ज्यादा खाते हैं तो तुम्हारी भ्रामरी वृत्ति उड़ जाएगी, भ्रामरी वृत्ति समाप्त, और वो संकट में, अब उसमें से एक सर्विस जाने वाला है, पति भी सर्विस पर जाने वाली है और पति भी, दोनों सर्विस पर जाने वाले हैं, तो आहार उनके लिए पेट भर खाने लायक नहीं बचा, तीन लोगों का, या तो वो साधु के उद्देश्य पका के रखेंगे एक अतिथि का और ज्यादा पका के रखेंगे तो उद्दिष्ट दोष लग रहा है, ज्यादा पकाएंगे तो उद्दिष्ट दोष, अब ज्यादा देंगे तो बाद में समस्या कि भोजन कम है, बाद में बनाना पड़ेगा। और साधु भी यदि ऐसा विचार करे, नहीं नहीं श्रावक तो बाद में बना के खाता है, उसमें कोई दोष नहीं है, उनका ज्यादा खा लो तो भ्रामरी वृत्ति समाप्त हो जाएगी, इधर कुआ इधर खाई। सब ओर से चिंतन करना चाहिए, अद्वा तद्वा विचार करके कुछ भी निर्णय लेना और कुछ भी चर्चा करना ठीक नहीं है। और जो दे रहा है वहां से डांट रहे हैं फोन पर, तुम सब साधु को बिगाड़ रहे, सभी मिल करके बिगाड़ रहे हैं। क्यों? डिब्बे ले आ रहे, डिब्बा 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 डिब्बा, हद कर दिया। और चर्चा करने के लिए यहां कोई एक भी नहीं आ रहा है समझने, उनको पता है कि हमारे बहुत कुछ दोष हैं, उनको छोड़ नहीं सकते, हम उद्देश्य ही खिलाना चाहते हैं। और ऐसे कई साधु लोग रहे हैं, कई साधु लोग ले रहे हैं, तो इनको क्या हो गया, इनको भी लेना चाहिए। तो हमारे उनकी गलत चर्या को मेरे ऊपर थोपने के लिए आप तैयार हो जाओगे, तो मैं तो तैयार नहीं हूंगा, आप थोपोगे जरूर। व्याप्ति लगा रहे हैं वो, बहुमत के आधार पर, वो व्याप्ति भी बहुमत पर टिका रहता है। खुद चर्चा करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, नहीं हम मूलाचर जानते हैं, मूलाचर में आया वो एक क्रम से, तो ये सामने से डिब्बा क्यों आ रहा है। ये शंकाएं घर कर गई हैं, घर कर डीप घर कर गई हैं, और वो कहीं नहीं दिखाई देता, यहां दिखाई देता है। डिब्बा 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 डिब्बा, अविवेकी साधु भी डिब्बा डिब्बा कह रहा है और अविवेकी श्रावक भी डिब्बा डिब्बा कह रहा है। और ये डिब्बा जहां संयम का पोषक है वहां धर्म की अप्रभावना का पोषक बन रहा है। उल्टी सीधी चर्चा, अरे आओ ना चर्चा करो यहां बैठ करके, क्या सही है उसके अनुसार चलेंगे हम, हैं? करो चर्चा, खुल्लम खुल्ला करो ना, पीछे से क्यों, वहां से डांट रहे हैं, देने वाले डिब्बा लेकर जाने वाले उनको डांट रहे हैं कि कोई साधु ऐसा नहीं लेते, कोई साधु ऐसा नहीं लेते, ये अकेले लेते। हम इतने फुकट थोड़ी हैं जो ले रहे हैं। साधुचर्या हमारी बिगड़ रही हो, वो तो किसी परिस्थिति में बीमारी आदि होती है ना, उस समय लिया जाता है। तो आओ यहां पर मूलाचार में लिखा हो बीमारी आदि में ही लिया जाता है, आने टाइम में नहीं, उसको भी लाकर बताओ ना मूलाचार। अरे बहुत दुरुस्ती करनी पड़ेगी दिमाग को, बहुत ठीक करना पड़ेगा, उसमें विवेक कुछ भी नहीं है। ले लो डिब्बे से आए हुए आहार, ले लो बेधड़क ले लो, तुम्हारा संयम पलेगा, ये गारंटी देते हम। एक डिब्बे मात्र से कभी संयम नहीं बिगड़ता, बल्कि श्रावक की समस्याएं खत्म होती हैं उससे, होंगी कि नहीं होंगी,
होंगी।
श्रावक समय पर वो अपना सर्विस जाएगा, थोड़ा लेंगे तो, और ज्यादा लेंगे तो एक एक दो, जिस घर में दो लोग हैं मान लो, वहां पर कितना भोजन बनेगा, दो का ही बनाना पड़ेगा। साधु को अधिक बनाना तो पहले से निषेध है, और उसमें से एक साधु पूरा भोजन करेगा तो तीनों को अधपेट रहना पड़ेगा। नहीं वो तो यथालब्ध है, यथालब्ध लिखा है शास्त्र में कि जितना मिलता है जैसा मिलता है वैसा लेना चाहिए, तो ये भी अविवेकपना है। यथालब्ध लिखा है, यथालब्ध कैसा कहती, यथालब्ध साधुचर्या होती, मूढ़ बुद्धि यथालब्ध रोज करोगे चले जाओगे ऊपर, जल्दी समाधि मरण हो जाएगा। और आज के जमाने में जॉइंट फैमिली कम होती चली गई, केवल दो या तीन, अपना एक बच्चा और माँ बाप, तीन लोग रहते हैं, वही चौका लगा रहे हैं। तीन ही लोगों का भोजन मुश्किल से रहता है वहां, और वो क्या सोचेंगे, अगर तीन ही हैं तो महाराज को क्या देंगे, तो महाराज के लिए भी बनाएंगे वो ज्यादा, तो महाराज को लेकर अपना भोजन पकाएंगे, तो खुद प्लस महाराज दोनों हो गए, तो वो पूरा उद्दिष्ट ही है जो महाराज के लिए पकाया गया
है।
दे सकते हैं ना, पर भैया जी भी तो उतने ही खाएंगे ना, उसमें से 10% वो आहार दान देना चाहिए तो उनकी जिम्मेदारी हो, नहीं देंगे तो आपका ही केवल 30% रहेगा वहां, उनका भोजन हमको नहीं दे सकते अगर निमंत्रण दिया है तो, वो खुद देना चाहे तो दे सकते हैं, निमंत्रण है और वो पेट भर खाएंगे, अतिथि सेवा करना चाहे तो वो खुद जिम्मेदार है, उनको देव आप नहीं कह सकते, उनकी स्व इच्छा से दे रहा है तो दे सकते हैं। जिसके लिए आपने पकाया उनका आहार मुझे देने का अधिकार आपको नहीं है। वो खुद स्वयं देंगे तो अलग बात है, और वह वैसा देना भी उनके लिए ठीक नहीं है वस्तुतः, क्योंकि वह आपका आपकी वस्तु है, आप दान में दे रहे हैं तो पर वस्तु ही तो है वो, तो पर वस्तु को आप दाता बनाकर मुझे आहार कैसे दोगे, पर वस्तु ग्रहण दोष क्या नहीं लगेगा क्या है? आपका आहार ये लेकर उसमें से कुछ देना और अतिथि समीभाग इस तरह से करना, ये रोज रोज तो ठीक नहीं है, एकाध बार भावनावश दे दिया बात अलग है, रोज रोज तो ठीक नहीं है, इनका खुद का होना चाहिए। दाता का मतलब खुद का सब कुछ, और देने वाला वह खुद, ऐसा है। सभी शंकाएं निरसन हुई क्या नहीं हुई?
एक सत्य घटना है, 4 साल पहले एक महाराज जी के साथ थे हम, एक गांव में गए थे तो श्रावक के घर पड़गान हो गए, तो देखा तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही बनाया था, तो महाराज जी ने जल्दी 10 मिनट में हार करके बैठ गए, मुझे बोले इतना थोड़ा थोड़ा बनाए और इसके बाद ब्रह्मचारी कैसा भोजन करिए, इसलिए वो जल्दी बैठ गए 10 मिनट में बैठ गए, ऐसा भी हो सकता 10 मिनट में बैठ गए।
परंतु साधुचर्या को समझाना तो चाहिए ना,
इसलिए
श्रावक चर्या समझाओ, साधुचर्या मत समझाओ, लेकिन श्रावक चर्या तो समझाओ, 16 दोषों का कथन करो ना, क्या हो रहा है, 16 दोषों का स्पष्ट समझाओ श्रावक को, इस प्रकार चर्या है। अगर पंचम काल पर आप टालते हैं तो फिर धरती पर ना मुनि है ना श्रावक है, ये तो केवल मुनि बनना और श्रावक बनना ये नाटक मात्र रहेगा, श्रावक धर्म टिकेगा तो मुनि धर्म टिकेगा, क्योंकि निर्दोष आहार देना आपके ऊपर डिपेंड है, और आप नहीं दे पाए तो मेरा एक मूल गुण चला गया, यशना समिति।
लेकिन लोग क्या कहते हैं, काल को देखते हैं, साधु को भी बदलना चाहिए,
साधु बनने की जरूरत ही नहीं है, बदलना हो तो 28 मूल गुण के बिना आहार लेना ये अन्याय नहीं है क्या? 28 मूल गुण के बिना आप हमारी पूजा आहार देने से पहले करते हैं, वो गुणों की पूजा करते हैं, गुण नहीं है, दोषों की पूजा कर रहे हैं कि गुणों की पूजा कर रहे हैं, फिर ऐसे दोषों की पूजा क्यों कर रहे हैं? साधु नहीं है कह करके आहार दान बंद कर दो, हम दोषों की पूजा नहीं करते। वो तो सामान्य अज्ञानी जीवों के विचार, वो बड़ा नहीं होता, पर सही तो यही है ना, अज्ञानी जीव कुछ भी कहते रहते हैं, वो तो कहेंगे कल के दिन मुनि बनना ही नहीं चाहिए, लोग कुछ भी कहते हैं ये भी कहेंगे, और खुद के बारे में भी सोचेंगे, हम तो पंचम काल में बन ही नहीं सकते इसलिए बन नहीं रहे हैं, तो ऐसे अज्ञानियों के विचार को लेकर के आप क्या करेंगे? वो तो नाना तरह के विचार रहते हैं, उनको कब तक विचार करोगे? दूसरे के विचारों को मन में तो लेना ही नहीं चाहिए, वो आगम है क्या? वो कहते हैं इसलिए हम करें, हमको तो यहां जो शास्त्र में है इससे चलना होता है क्या? नहीं, इतना देखना आगम के अनुकूल चर्या बनाना। और फिर ऐसी चर्या बनाने पर निंदा होती है तो निंदा होने तो जरा सहन करो उसको। नहीं महाराज, आप तो गुरु हैं, आपकी चर्या को लेकर के अज्ञानी लोग ऐसे ऐसी चर्या करते हैं, तो अज्ञानी तो कल के दिन ये भी कह सकता है कि आप मुनिव्रत छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे तो आपके बहुत निंदा करेंगे, आप दिगंबर क्यों हैं क्यों हैं क्यों हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊं।
महाराज की जय।